आगे देखेंगे आयत नंबर 16 से। यहाँ से अब टॉपिक पलट रहे, इकट्ठे एक ही साथ आयात को करेंगे। ला तो हर रिक भी लिसान नकली तो अजल भी इन अलैना जम अहु व क़ुरआन फ़ाइज़ा क़रअना हु फ़त्तबी क़ुरआना ثم ان علينا بيانا। ए नबी, आप हरकत न दें अपनी ज़ुबान को इसके साथ कि आप जल्दी से याद कर लें इसको। हमारे ज़िम्मे है इसको आपके सीने मुबारक में जमा करना और इसको पढ़ाना, फिर जब हम इसे पढ़ें तो आप इत्तबा करें इसी पढ़ने का, फिर हमारे ज़िम्मे है इसको खोल खोल कर बयान करना। ये सारी आयात, जैसा कि खुलासे में बात हुई, इब्तदाई दौर में जब वही आती थी तो नबी सल्लम इस अंदेशे के साथ कि कहीं आप कोई मिस ना कर दें, दूसरा मोहब्बत भी थी, खुशी भी थी, तो जो ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम कोई आयत बताते तो आप उसके साथ साथ पढ़ने की कोशिश करते। तो यहाँ आपको बताया गया कि ऐसा ना करें। क्यों ना करें? इसलिए कि जब इंसान किसी के पीछे पीछे पढ़ता है ना, तो वो इंसान उसका उस्ताद बन जाता है। अल्लाह सुबहान तआला नबी सल्लम के उस्ताद जिब्राइल को नहीं बनाना चाहते थे। अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे नबी सल्लम पढ़ते तो बाज़ लोग कहते हैं कि फिर उनका मुकाम नबी सल्लम के उस्ताद का हो जाता और फिर वो सिर्फ उन्हीं की इताअत और उन्हीं की बात मानने और उन्हीं की खिदमत में वक्त गुजार देते तो नबूवत की जिम्मेदारियों पर हर्फ पड़ता। ये किसी की कही हुई बात है जो मैंने दोहराई, अल्लाह ताला को पता है इसकी हिकमत क्या है, लेकिन नबियों का मुकाम जो है बहरहाल फरिश्तों से अलग होता है। तो यहाँ बताया कि आप ऐसी हरकत ना दें ज़ुबान को कि जिसकी वजह से आप परेशान हों। और इसमें आप देखिए कि जब भी कोई बंदा पहले दिन कुरान सीखने के लिए बैठता है तो वाकई उसके अंदर यही चीज़ होती है, उसको लगता है भूल जाएगा। आप वो दिन याद करें जब आप शुरू में इस कोर्स के पहले पहले दिनों में थे, चाहे आप शुरू से ज्वाइन हुए या बीच में। चंद दिन क्या होते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, लिखा नहीं जा रहा, याद नहीं हो रहा, तवज्जो नहीं होती, बहुत जल्दी बोलती हैं उस्ताद, इस तरह से लफ्ज़ आते हैं ना जहन में। अब वो सब कुछ आसान है, पहले रूट वर्ड्स याद नहीं होते थे, अब वो आसान हो गए हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं गम ना करो। आप देखें, गाड़ी नई कोई लेता है तो झटके खाता है, नया चूल्हा हो किसी के घर आप जाएँ आपसे चूल्हा ही नहीं खुलता, पतीली किसी और की हो, चम्मच किसी दूसरे का हो, आप जूता किसी दूसरे का पहन के देखें, यानी हमेशा नई चीज़ इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती है, उसकी वजह से इंसान को बहुत मुश्किल होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, हम जमा करेंगे। ये है वो कुरान का मिजाज जिसको आप देख सकते हैं कि पहले सीने में जमा होता है फिर पढ़ा जाता है। यहाँ एक बड़ा लतीफ़ सा नुक्ता है, जिन सीनों में ख़ुद भी कुरान नहीं जमा होगा ना, वो पढ़ नहीं सकेंगे। एक बर्तन है, उसके अंदर आप कोई चीज़ डालते हैं, फिर वक्त पढ़ने पर पलटेंगे तो निकलेगी ना। जिसको भी पढ़ाने का शौक़ है उसको पहले जमा करना पड़ेगा, और जमा करने के लिए बर्तन खुला होना चाहिए, बर्तन खाली होना चाहिए, बर्तन साफ होना चाहिए। एक ही उस्ताद एक सबक सबको देता है, पढ़ाने वाले पढ़ने के बाद अमल करने वाले फ़र्क क्यों होते हैं? बर्तन की वजह से। कुछ का बर्तन पहले ही भरा हुआ था कई चीज़ों से, उनके अंदर जाते जाते आधा गिरता है, एक बंदा चार घंटे भी सुन लेता है दूसरा आधे घंटे में थक जाता है। आप इमेजिन करें कि 4 किलो एक चीज़ में डल जाएँ जो कि खाली है, और अगर वो 3.5 आगे ही डला हुआ है तो आधे किलो डलेगा ना। दिल खाली करना पड़ता है, वक्त खाली करने पड़ते हैं। इसी तरह साफ़ सुथरा इल्म मिलता है, लेकिन पढ़ के जाने वालों में बहुत सारी अमेजिशें हो चुकी होती हैं, क्योंकि दिल का बर्तन गंदा है या दिल में कुछ है। ज़रूरी नहीं होता कि गंदगी ख़राब ही हो। मिसाल देती हूँ आपको कि किसी बर्तन के अंदर पहले से लस्सी रखी हो या दही रखा हो, दही को बुरी चीज़ है? नहीं बुरी चीज़। लेकिन ऊपर से आप भैंस का ताज़ा दूध डाल दें, क्या होगा? थोड़ी देर में वो दूध ख़राब हो जाएगा ना। तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि पहले की जो चीज़ आपके दिल में है वो ख़राब थी, ना उसे बेला ख़राब नहीं होती, लेकिन मिस मैचिंग होती है। बस लोग इस चेंज को कबूल ही नहीं कर पाते कि हमारे पास पहले से जो दिल की तख्तियों पर लिखा हुआ है, अब ये मिट मिट के दूसरा क्यों लिखता जा रहा है, लिहाजा इसको हटा दो। नहीं, पहले जमा होगा, फिर साफ सुथरी जगह पे होगा, फिर कुराना फ़ाइज़ा कराना हो, फिर जब हम इसे पढ़ाएं, यानी जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने ये कलाम रखें, तो उसके बाद आप फिर इसके पीछे इसी पढ़ने का इत्तबा करें। यहाँ से आप देखिए कि जो लोग सुन्नत या हदीस का इनकार करते हैं ना, क्योंकि आज के दौर का बहुत फैशनेबल मसला के इनकार हदीस। फैशन है ये आज के दौर में, जैसे आप कहते हैं ना लंबी कमीज़ों का फैशन है, ये फैशन है कि हदीस का इनकार कर दो। ओ नहीं, हम बहुत ऐसे, नो नो नो, बहुत पढ़े लिखे हैं। जैसे लोग पहले दौर में मौलवियों का मजाक करते थे ना, मौलवी, मुल्ला, दाढ़ी वाला, टखनों सूची शलवार, अब वही मरज बढ़ते बढ़ते नबी सल्लम की शख्सियत तक चला गया। दिल के अंदर छुपी हुई बात है नबी, वो अरब में रहते थे, बकरियाँ चराते थे, उनकी बातों का क्या पता है। कोई नहीं जी, आप कुरान की बात करें, कोई इतनी भी जरूरत ना करे ना, कहते नहीं नबी सल्लम तो बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, लेकिन बाद में उनकी बातों में लोगों ने अमेजिश कर दी। अल्लाह कहते नहीं, फ़ाइज़ा क़रानाहु फ़त्तबे क़ुरआना थुम्मा इन्ना अलैना बयाना। चार आयतें हैं, फितने इनकार सुन्नत की जड़ काट दी। ज़बरदस्त एतराज़ात जो हदीस पे और सुन्नत पे लगते हैं उसको अलग कर दिया। हर वो शख्स जो कुरान को अल्लाह ताला का कलाम समझता है उसके लिए अल्लाह ताला निजात का रास्ता आसान कर देते हैं। इसलिए जिस तरह कुरान हुज्जत है, इस तरह हमारे लिए हदीस भी हुज्जत है। यहाँ हम इसकी डिटेल पे बात नहीं करेंगे, जो कि पीछे कई जगह हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब अल्लाह सुबहाना ताला कोई भी बात कहना चाहता है या तो कुरान में उसको ज़िक्र कर देता है या नबी सल्लम के दिल पर उसको इल्का कर दिया जाता था और आप उसको फिर दूसरों के सामने पेश कर देते थे। और इससे वो जो इल्ज़ाम पीछे लगा था कि नबी सल्लम के पास कोई फ़रिश्ता नहीं, जिन आता है या शैतान आता है और आपके ऊपर बातें इल्का करता है, सूरह शूरा की बिल्कुल आखिरी आयात में, उसकी भी तस्दीक और हो गई कि आपके पास फरिश्ता आता था, शैतान नहीं, और अल्लाह के हुक्म से ये सब कुछ आता था। अच्छा, इसके बाद अब अगर हम नबी सल्लम की ज़ात के अलावा अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा के बात करें तो क्या पता चलता है कि किसी की ज़ुबान से जारी करवाना ये सरासर अल्लाह का फ़ैसला। जैसे चश्मे जारी होते हैं ना, बस देखिए कि इतना इल्म होता है लोगों के पास लेकिन उनकी ज़ुबान पे बात नहीं आती। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में आप कभी अरब और सऊदी अरब और कुवैत और इन साइड्स पे जाएं, इतने बड़े बड़े इल्म के मंबे हैं जिसको आप कह सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया उनके फ़ायदे ले रही है, उनकी किताबें, उनके फतवे। वो यानी अपनी ज़िंदगी में हज़ारों किताबें लिख देंगे लेकिन वो बोल नहीं सकते। हर आलिम बोल नहीं सकता तो क्या वो नाकाम है? नहीं, बोलने वाले तो बस सामने आ जाते हैं, ये कह लें मशहूर हो जाते हैं या उनका नाम है, मीडिया उनको कवरेज दे देता है, अल्लाह ताला उनका फैज़ आम कर देता है, लेकिन जो बातें लिखी गई, जो उनका इल्म था वो उसमें रहा। तो हर इंसान अपनी खूबी को पहचान के पहले अपने अंदर स्किल्स पैदा करे, फिर उसके बाद जो काम वो अच्छा कर सकता है उसको अच्छे तरीके से कर दे। इसके बाद अब दोबारा मौजू असल हमारी जो सूरत का है, कल्ला बल तो हिब्बुनल आजिला, हरगिज़ नहीं बल्कि हकीकत ये है कि तुम मोहब्बत करते हो जल्दी मिल जाने वाली नेमत से, व तज़रूनल आखिरा, और तुमने छोड़ रखा है आखरत को। ये कल्ला क्या बता रहा है, किससे कहा जा रहा है? हरगिज़ नहीं, ये तो इनकार है क़यामत का। पीछे जब इन आयात से पहले मौजू चल रहा था कि ये कैसे हो सकता है क़यामत आएगी और मुमकिन नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि बिल्कुल आएगी, ये पॉसिबल है, इसका यकीन रखो ये आएगी, लेकिन तुम्हारा दिल क्यों नहीं चाहता आखिरत को मानने को कि तुम सब कुछ इस जल्दी सी दुनिया में लेना चाहते हो। सच है ना? आप देखिए कि आखिरत का अजर दिखता नहीं है ना, जैसे आखिरत नहीं दिखती। दुनिया में हम देते हैं पैसे, साथ ही चीज़ हमारे हाथ में आ जाती है, हम कोई भी जज्बा किसी को देते हैं उसका असर हमें नज़र आने लग जाता है, लेकिन आखिरत की नीयत से जो चीज़ें रखते हैं वो छुपी हुई हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जो जल्दबाज लोग होते हैं ना वो सब्र नहीं कर सकते। मिसाल देती हूँ आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल चीज़ की इसमें, कि कोई किसान ये कहे कि देखो मैंने अपने ये दाने नहीं देने, मिसाल है कि पिछले साल की फसल से बचा के या बाज़ार से उसने ख़रीद के कोई एक मन गंदम ली ताकि उसको बीज के तौर पर डाले ताकि उसके बाद कई मन उससे मिले, कुछ दिन तो उसको वो गंदम अपने हाथ से जुदा करनी पड़ेगी ना। आप इमेजिनेशन में लाएं कोई ऐसा किसान, कोई फार्मर, कोई भी खेती बाड़ी करने वाला, वो कहे नहीं गंदम से मज़ीद गंदम उगे लेकिन ये मेरे हाथ में ही रहे, ये मेरी थैली में रहे, मेरी नज़रों के सामने इसकी ढेरी पड़ी रहे, बस इसी के अंदर से दाने उगे, क़यामत तक पड़ी रहेगी, अगर पड़ी रह सके, दाना एक भी नहीं निकलेगा, ख़राब होगी। कुछ दिन के लिए उन दानों को ज़मीन के हवाले करना पड़ता है। अब वो इमेजिनेशन में लाएँ फीलिंग, एक मन गंदम किसी ने ख़रीदी और जिस वक्त उसने ज़मीन में डाली, अगर उसको ये यकीन ना हो कि ये ज़मीन मेरे इस डाले हुए को वापस लेकर आएगी तो क्या वो डाले? सब्र किया ना, जब थोड़ा सा सब्र किया चंद महीने के बाद उसका असर दिख गया। ये है दुनिया में रहते हुए आखरत की सोच पे काम करना। इंसान यकीन करें सिर्फ अल्लाह ताला को, मैं कहती हूँ आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि आजमा के देखें। हैरत होती है, मैं खुद सोचती हूँ कि आप अल्लाह के लिए कुछ करते हैं ना तो उसके अंदर आपको अल्लाह उसी तरफ दिखाता है। वतज़रून अलआखिरा, आखरत को छोड़ दिया, लीज प्रायोरिटी कर दिया तुमने इसको। इस चार दिन की दुनिया, फ़ानी दुनिया की लज्जत में तुम इतने मगन हुए कि तुम्हें हमेशा की आखरत छूट गई। एक तो ना तज़रून अलआखिरा छोड़ा हुआ है, और अगर आप इसको इंग्लिश में देखें लीज प्रायोरिटी, दुनिया क्या है सबसे बेस्ट फर्स्ट वन, और आखरत बिल्कुल पीछे। जो लोग इस दुनिया को अपनी सारी कोशिशों का मकसद बना लेते हैं, मिल उनको भी जाएगा लेकिन आखरत में कुछ नहीं होगा, लेकिन जो आखरत को सामने रखेगा उसको दुनिया भी मिलेगी। इस पर कई बार बात हो चुकी, इस दरवाज़े से निकलेंगे सिर्फ इसी से निकलेंगे। आप कह नहीं जी मुझे तो उस बाहर वाले दरवाज़े से निकालें, तो हम क्या करेंगे? आपको यहाँ से तो नहीं ले जाएंगे, इस दरवाज़े से गुजार के बाहर लेके जाएंगे। आखरत बाहर का दरवाज़ा है, दुनिया ये दरवाज़ा है। जो लोग सिर्फ दुनिया को तो हिब्बून अलाजीला, उजलत से जल्दी मिलने वाली पाते हैं, वो इस दरवाज़े से निकल के आप देखिएगा कि वो अपने बाहर गांगन जिसको बोलते हैं या जो पैसे जो उसमें तंग हो जाएंगे। इस हॉल में आप आराम से बैठे हुए हैं लेकिन आप कहते नहीं मुझे निकालो इस कमरे से, निकालो इस रोड से बाहर कर दो, जाइए आप सारे उधर चले जाएं बाहर, पैसेज में आप कदम घुटने लगेगा, फिर आप क्या कहेंगे हाय बाहर निकालो। ये है मईशतन ज़नका। हम जब इस दुनिया के फ़ायदों को पाने के बाद सिर्फ इसी के साथ रहते हैं अल्लाह और दुनिया और दुनिया और दुनिया, तो आप देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी तंग होती है। आप सोचिए ये हॉल है आपका घर होता, ये नया आपने लिया, इतने ही घर है, आप एक सोफ़ा ले आते हैं, एक बेड लगा देते हैं, उधर कुर्सियाँ रख देते हैं, उधर खाना रखते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन आप फिर बाज़ार गए, कोई फर्नीचर मिला एक और ला के आपने इधर रख दी चीज़। तीसरे चौथे दिन गए कोई और मशीन को डेकोरेशन पीस ली। एक साल में इस कमरे में रहना आपके लिए क्या होगा? कमरा आपके लिए तंग होगा ना। ये मईशतन ज़नक है। इस दिल से माल की मोहब्बत निकालें, जैसे बीज फेंकता है ना कोई किसान, छट्टा मारना कहते हैं ना, ऐसे छट्टे की तरह डाल दो, फिर पता नहीं कहाँ गया। अल्लाह के लिए बंदा देते हुए या इस दुनिया में आखरत के लिए नेकियां करते हुए, जब तक ये जो कहते हैं ना कि गिनना, कैलकुलेटिंग माइंड नहीं होता मोमिन का, इसको इंग्लिश में ख़ास बोलते हैं, जिसका मैं लफ्ज़ थोड़ा सा आसान करना चाह रही हूँ, कि यानी कुछ चीज़ें होती है ना परचोल करते हैं लोग, इससे मुझे क्या फ़ायदा, उससे उसको क्या फ़ायदा है, मेरा नुकसान है उसका नुकसान है। और एक सूरत क्या होती है कि जो बेखतर कूद पड़े, बेटा रास्ते में गया तो गया, बीवी को छोड़ा तो छोड़ा। मोमिन हमेशा गैब पर ईमान लाता है क्योंकि उसको गैब के पीछे खुली हुई हकीकत दिखती है। ऐसे लोग जो दुनिया में रहते हुए आखरत के आईने में देखना चाहते हैं, फरमाया उनका हाल क्या होगा, वजूह हुई यौम इज़िम नादिरा, कुछ चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे, फ्रेश होंगे। नादिरा तरोताज़ा को कहते हैं, हशाश बशाश हमारे यहाँ उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ आता है। इला रब्बिहा नाज़िरा, वजह क्या है, क्योंकि अपने रब को देख रहे होंगे। नाजिर से नाजिरा, और नाजरीन का लफ्ज़ तो हम बहुत जानते हैं, यहाँ अल्लाह सुब्हानहु तआला के चेहरे के दीदार की बात है। और हमारा ईमान है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएगा लोगों को। कितना करवाएगा, किसको करवाएगा, जितने जिसके अमल होंगे। लोग अपने आमाल की नस्बत से अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार करेंगे। कुछ को हर हफ्ते में यानी जुमे के एक दिन पे होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सुबह शाम कराया जाएगा, कुछ हर वक्त हर हाल में ही अल्लाह के पास रहेंगे। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में कर दे। लेकिन आप देखिए कि जब इंसान अक़ल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है ना, तो वो वाज़ह हकीकतों का इनकार करता है। दो ऐसे बातिल फ़िरके गुज़र चुके हैं आज के दौर में, तो उनमें से कोई नहीं दिखता लेकिन पहले गुज़र चुके। एक का नाम था मोतज़िला और एक ख़्वारिज। मोतज़िला भी असल में उज़ल से, अज़ला कहते हैं निकल जाने को, मोतज़िला इनको इसलिए भी कहते हैं कि ये दीन से निकल गए। और ख्वारिज खराजा से, ये भी निकलने वाला फ़िरका है। इन दोनों फ़िरकों ने इनकार किया कि क़यामत के दिन हम अल्लाह को देखेंगे। इतनी वाज हकीकत है, इला रब्बिहा नाज़िरा, कोई इसमें शुबे वाली बात नहीं। नज़रा नाज़िरा, देखना, हर चीज़ दिखता है। लेकिन कहते थे नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? उसकी भी सिर्फ पीछे एक चीज़ थी, फ़लसफ़ा, शुबहात। कहते थे आँख से देखने के लिए देखने वाले और जिसको देखा जा रहा है, इन दोनों के दरमियान जो मुसाफत के लिए शर्तें हैं ना, वो खालिक और मखलूक के बीच में नहीं हो सकती। भाई आपको इतनी अकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या? अल्लाह जिसने आंखें आज दी हैं, कल वो दूसरी आंखें देगा। सही रिवायात से ये चीज़ मिलती है कि क़यामत के दिन जन्नत में लोग अल्लाह सुबहान तआला का दीदार करेंगे, कि किस तरीके से क़यामत के दिन इंसान खुशियाँ मना रहे होंगे कि हम अपने रब के पास आए हैं। और हकीकत यह है कि अल्लाह के चेहरे का दीदार ही जन्नत का असल हुसन है। आप कहीं भी चले जाएं, घर में 100 चीज़ें पड़ी हों, खूबसूरत भी, खाने की, पीने की, लेकिन घर वाला घर ना हो, कैसा लगता है? दिल भी नहीं करता वहाँ बैठने को। जन्नत असल में मीटिंग प्लेस है अल्लाह सुबहाना ताला के लिए बंदों की। बंदे रब से मुलाकात करेंगे, अल्लाह ताला उनके आमाल, उनकी कोशिशों, उनके हालात को सामने रखते हुए किसी को एक दर्जे की जन्नत दे देंगे, किसी को दूसरे दर्जे की जन्नत देंगे। तलब ये किया करें कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस दे। नबी सल्लम ने फरमाया कि जब भी मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि इसकी छत रहमान का अर्श है। आप सोचें, छतों पे आज कितना पैसा लगाया जाता है, कहीं उस पे शीशे लगाते हैं, कहीं उसके ऊपर बड़े बड़े फानूस लगाए जाते हैं, लेकिन वो छत भी कैसी प्यारी छत होगी कि जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। और अल्लाह ताला का अर्श कोई छोटी चीज़ नहीं है कि हम उसको के अच्छा नहीं है तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम खुद को वहाँ महसूस करो। जितना तुम अल्लाह ताला की उधर की दुनिया, अल्लाह ताला की मुलाकात को सोचोगे, उतना तुम्हारे दिल में अमल का शौक़ बढ़ेगा। नबी सल्लम की एक रिवायत है, सही बुखारी और मुस्लिम में आता है, सहाबा कराम कहते हैं कि हम नबी सल्लम के साथ बैठे हुए थे कि अचानक आपने 14वीं के चाँद की तरफ इशारा किया। रात का वक्त होगा, देखा हुआ। उस वक्त आपने लोगों से कहा कि लोगों, तुम अपने रब को इस तरह देखोगे जिस तरह इस 14वीं के चाँद को देखते हो। और फरमाया, क्या तुम में से कभी किसी ने ऐसी रात में जिसमें कोई बादल भी ना हो चाँद को देखने में रुकावट महसूस की? इसी तरह कल तुम अल्लाह को देखने में कोई रुकावट महसूस नहीं करोगे। अगर एक इंसान सोचे तो वाकई उसका दिल हिल जाता है कि अल्लाह तेरी साथ मैं तुझे देखूंगी। इसके लिए दुआ भी नबी सल्लम मांगा करते थे। लंबी दुआ है जिसका एक हिस्सा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बरदल आईशी बादल मौत। ए अल्लाह, मैं तुझसे मौत के बाद आरामदेह ज़िंदगी का सवाल करता हूँ। दुनिया में तो बड़ी लग्जरीज की आदी हूँ, बहुत मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, वहाँ भी लग्जरी चाहती हूँ। व लज्जत नजरी इला वजहिक, और तेरे चेहरे को देखने की लज्जत का सवाल करती हूँ, यानी मुझे अपने रुख अनवर की लज्जत अता फरमा। व शौक़ इला लिक़ाइका, और मुझे अपनी मुलाकात का शौक़ अता फरमा। जब अहले जन्नत को जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार होगा तो उस वक्त वो किसी और नेमत की तरफ तवज्जो ही ना करेंगे। आप सोचिए, दुनिया में भी ऐसे ही होता है, जिससे मोहब्बत होती है उसकी तलब है। अगर किसी को दुनिया में मोहब्बत नहीं है अल्लाह से, वो कहेगा अच्छा होगा, दिखा देगा, ठीक है। जिसको दुनिया में नमाज का शौक़ नहीं, जिसमें अल्लाह ताला से बात होती है, कुरान का शौक़ नहीं जो अल्लाह का कलाम है, उसको अल्लाह की मुलाकात का क्या शौक़ होगा? एक रिवायत बड़ी खूबसूरत है हज़रत जाबिर से, नबी सल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत अपनी नेमतों से लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे होंगे। इमेजिन करें ज़रा कि अचानक एक नूर चमकेगा, वो अपने सरों को उठाएंगे, बस वो देखेंगे कि इनका रब तबारक व ताला इनकी तरफ तवज्जो फरमा रहा है और इनको सलाम दे रहा है। अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ देखेगा और वो बंदे रब के जमाल में इस तरह गर्क होंगे कि जन्नत की नेमतों की तरफ नज़र उठाकर देखना भी इनको गवारा ना होगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने ऊपर हिजाबे अजमत डाल देंगे और इसका नूर और इसकी बरकत इसके अंदर बाकी रहेगी। इला रब्बिहा नाज़िरा, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में कर दे। आप देखिए कि अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार के बाद वहाँ जन्नत में जो हालत होगी, एक बड़ी खूबसूरत रिवायत का खुलासा है कि जन्नती एक बाज़ार में जाएंगे, जैसे दुनिया में बाज़ार लगते हैं जुमे का, जन्नत में भी एक बाज़ार लगेगा। तो जब जन्नती जाएंगे वहां, तो वहां एक पूरा बड़ा सा, जैसे आप कह सकते हैं कि वही बात जो अपनी, सिर्फ हम तो समझ के लिए कह रहे हैं ना, हमें तो नहीं पता जन्नत कैसी है, लेकिन तस्वीर में ऐसे आता है कि बहुत बड़ा स्टेज होगा, बहुत ही खूबसूरत महफिल सजेगी, लोग वहां जाके जमा हो जाएंगे, फिर अल्लाह सुबहाना तआला अपना दीदार करवाएंगे। अल्लाह ताला को देखने के बाद उनके अपने चेहरों के ऊपर इतनी रोशनी और इतनी खूबसूरती होगी कि जब वो वापस जाएंगे अपने घर वालों के पास, तो वो कहेंगे जब तुम गए थे तो तुम इतने हसीन नहीं थे, लेकिन तुम आए हो तो तुम और हसीन हो गए हो। क्या वजह? खूबसूरती का असर होता है। आप देखिए, हम खुश होते हैं ना, हम किसी अपने प्यारे को देखते हैं, हमारा चेहरा खिलता है। नेमतों में क्यों होता है, बाज़ दफ़ा आप देखिए शादी के बाद एकदम लड़कियों की शक्ल बदलती है ना, एकदम निखार आने लगता है। क्यों? कि इंसान को खुशियों का असर महसूस होता है। तो जब वहाँ जाके अल्लाह को देखने से चेहरे पे नूर आएगा, तो क्या दुनिया में अल्लाह के कलाम को पढ़ने से नूर नहीं आएगा? जो लोग नमाजी होते हैं उनके चेहरों को देखें, चमक देखें, इत्मीनान देखें, सुकून देखें। और आप महसूस करें इसको एक और एंगल से, कि जिसको मिलने की तलब होती है ना, सब कुछ हो लेकिन ध्यान उधर ही रहता है, तड़प तड़प तड़प। जिस दिन वो बिछड़ा हुआ मिल जाता है ना, तो बच्चा भी माँ की गोद में सो जाता है सुकून से, इत्मीनान से। कोई सोचे, बीवी शौहर से कई साल से जुदा है, बहन भाई से जुदा है, बाप से बेटी गले नहीं लगी, कितनी तड़प होती। आप वो वक्त महसूस करें जब आपके प्यारे भी आपके पास हों। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो हमें दुनिया में खुशी होती है ना, वो अपने प्यारों के पास होने की है। सच है कि नहीं? आप फंक्शन से भी क्यों ना जाएं, कहीं खुशी से भी होके जाएं, जो ही आप अपने घर वालों के पास बैठते हैं, आपको एक इत्मीनान की खुशी होती है। ईमान वाले की रूह तड़प रही है, वो बेचैन है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि आदम के अंदर मैंने अपनी रूह फूंकी। हमारी तड़पती बिलकती सिसकती हुई रूहों को चैन कब आएगा? हम जब अपने रब को देखेंगे। कोई इमेजिन कर सकता है? कभी बाहर को बड़ा खूबसूरत मंजर देखे तो दुनिया में अल्लाह के साथ मोहब्बत करेंगे तो तड़प पैदा होगी। अब बिल्कुल हमारा सोचने का अंदाज़ बदल जाना चाहिए, हमें अंदेशे नहीं लगने चाहिए, हमें मोहब्बत हो, खुशी हो। क्या पता किसी वक्त भी हमारे जाने का वक्त आ जाए, तो क्या हम अपने रब की मुलाकात की मोहब्बत में जाएंगे या ऐसे ही जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो अल्लाह से मिलना चाहता है, अल्लाह भी उससे मिलना चाहता है। दुनिया में एक मारूफ जुमला बना हुआ है हमारे कल्चर में कि दिल को दिल से राह होती है, जब एक मोहब्बत करता है तो दूसरा भी करता है। और हकीकत में मैंने इसको फील किया है, और साइंस भी अब इसको प्रूफ कर रही है। यकीन करें, आपका सेलफोन कहीं भी पड़ा हुआ है, घंटी सबकी एक ही जैसी है। अब तो कई ऐसे फ़ोन आ गए हैं ना, घंटी ही फ़र्क है, लेकिन यकीन से बता सकती हूँ कि जूँ ही बेल बजती है, एकदम लगता है ये उसका फ़ोन होगा, और बिल्कुल उसी का होता है। 99% बिल्कुल सेम लगता है कि ये किसका फ़ोन है, एकदम जैसे दिल में हिलती है बात। एक तो ना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तो होता ही है, या एक यह कि इस वक्त कोई फलां करता ही है, लेकिन समटाइम इतना अनयूजुअल किस्म का हो जाता है कि इंसान खुद ही कांप जाता है कि अल्लाह ये क्या। तो आप ज़रा इस बात को ले, जब आप दुनिया में अल्लाह ताला से मोहब्बत कर रहे होते हैं, तो आप सोचें कि आसमान पे अल्लाह भी आपसे मोहब्बत फरमा रहे हैं। वजू हुई यौम नातिरा इला रब्बिहा नासिरा। लेकिन कुछ बदनसीब भी होंगे, अल्लाह हमें दुनिया में ना करे ऐसों में और ना आखरत में ऐसों में करे। वजू हुई यौम इज़िम बासिरा, और कई चेहरे उस दिन उदास होंगे। बासिरा उर्दू में एक लफ्ज़ आपने सुना है, मुंह बसोरना। कहते हैं ये मुंह क्यों बसोर रहे हो, ये वही लफ्ज़ है। मुंह के जाविये बनाने, ऐसे शक्ल बना के दिखानी के खुश नहीं हो। बस बच्चे माँ को देखते ही मुंह बसोरना शुरू कर देते हैं, रोनी शक्ल बना लेते हैं ना, जो बिल्कुल वो मुंह इस तरह से बना के, और बिल्कुल आंखों में भी आंसू आने वाले और मुंह भी टेढ़ा हो रहा है, ये है बासिरा। बासी, मुझे तो बासिरा लफ्ज़ से बासी चेहरा समझ आता है, मुरझाया हुआ, हवाइयाँ छाई हुई हैं। और हाल क्या होगा? तजुन्नु, गुमान करता है। आई युफल बिहा फाकिरा, क्या आज इनके साथ कमर तोड़ सलूक होगा। और अबासिरा का लफ्ज़ जो है ना, इसके अंदर स्याही का मानी भी आता है, और तुर्श रू होना, काला रंग भी, शदीदुल अबूस, तेवरियां चढ़ी हुई, और काले हतु आबिसतुन, यानी काला स्याह चेहरा, तुर्श रू। और फाकिरा का लफ्ज़ क्या है? बहुत बड़ी मुसीबत। फ़कर कहते हैं रीढ़ की हड्डी के मोहरों को, ये जो स्पाइनल कार्ड होता है ना हमारी बैक में, उसको कहते हैं। फाकिरा के लफ्ज़ से फिर क्या मुराद हुआ? वो हादसा जो रीढ़ की हड्डी को तोड़ दे। और आज देखिए साइंस ने इसको बता दिया कि इंसान की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो जाती है, कभी ठीक नहीं होती। बैकबोन के प्रॉब्लम इस वक्त सबसे ज़्यादा फैलते जा रहे हैं, क्योंकि कई कई घंटे मुसलसल लोग बैठते हैं और उनकी ज़िंदगी है ही सिर्फ सिटिंग की, मूवमेंट कम है और बैकबोन के प्रॉब्लम सामने आते जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों को उस दिन लगेगा कि आज तो हमारी खूब हड्डी पसली एक होगी, चिकना चूर कर देगा, आज तुम्हारी हड्डियाँ टूटेंगी।